तपस्वी सुमेध को भगवान दीपंकर बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, निस्संदेह बुद्ध बनोगे। महारानी महामाया को स्वप्न आया कि एक सफेद हाथी ने उनकी कोख में प्रवेश किया। यह सिद्धार्थ का गर्भ प्रवेश था। महारानी महामाया ने पीहर जाते हुए राह में लुम्बिनी के शालवन में शिशु सिद्धार्थ को जन्म दिया। राजगुरु ऋषि कालदेवल ने शिशु के दर्शन किए और कहा कि यह बालक सम्यक संबुद्ध बनेगा और मुक्ति की विधि विपश्यना ढूंढ निकालेगा। हदोत्सव मेले के बीच एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा बालक सिद्धार्थ साधना में लीन हो गया। देवदत्त के तीर से घायल हंस को बचाते हुए सिद्धार्थ गौतम मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम द्वारा हिंसा बहीन धनुर्विद्या का अभ्यास। सिद्धार्थ जंगली घोड़े को प्यार से थपथपाते हुए वश में कर लेता है। कोलीय राज सुप्पबुद्ध की पुत्री राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह संपन्न। किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ सोचता है, क्या सब लोग ऐसे ही बूढ़े हो जाते हैं? बीमार व्यक्ति को देखकर सोचता है, क्या सभी ऐसे ही बीमार हो जाते हैं? एक शव को देखकर सिद्धार्थ सोचता है, क्या सभी मर जाते हैं? एक सन्यासी से मिलकर दुख मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए गृह त्याग की प्रेरणा पाता है। घर छोड़ने के पूर्व सिद्धार्थ कमरे में झांक कर पुत्र और उसकी माँ को सोते हुए देख रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने बाल काटे, वस्त्राभूषण उतार कर श्रमण वेश धारण किया। श्रमण सिद्धार्थ को मगध नरेश बिंबिसार ने अपने राज्य का एक भाग अर्पित करना चाहा, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। आचार्य आधार कलाम से 7 ध्यान सीखकर ऊंचा ध्यान सीखने के लिए सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। श्रमणाचार्य उद्दक रामपुत्र से सर्वोच्च आठवां ध्यान सीख कर भी सिद्धार्थ असंतुष्ट हो मुक्ति की खोज में आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ कठोर दुष्करचर्या का अभ्यास करने लगा। सिद्धार्थ द्वारा कठोर दुष्करचर्या त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने पर उसके साथियों ने उसका बहिष्कार किया। सुजाता द्वारा खीर अर्पित किया जाना यह बोधिसत्व का अंतिम भोजन था। वैशाख पूर्णिमा की एक रात पहले सिद्धार्थ पांच स्वप्न देखता है। पहला स्वप्न उसका शरीर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में बंग सागर से लेकर पश्चिम में सिंधु सागर तक फैलकर विराट हो गया है। वह इस बात का संकेत था कि उसकी शिक्षा जम्बू द्वीप तथा अन्य देशों में फैलेगी। दूसरा स्वप्न नाभि से निकलकर बढ़ता हुआ पौधा इस बात का संकेत था कि वह मनुष्य तथा देव ब्रह्माओं का भी शास्ता बनेगा। तीसरा स्वप्न काले बाल और सफेद वस्त्रधारी असंख्य गृहस्थ उसके समीप आते दिख रहे हैं जो उसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। चौथा स्वप्न सभी दिशाओं से विभिन्न रंगों के पक्षी आ आकर उसकी गोद में बैठ रहे हैं और सफेद वर्ण के हो रहे हैं, अर्थात चारों वर्ण के लोग उसकी शिक्षा को स्वीकार करेंगे। पांचवा स्वप्न मल मूत्र से सने हुए पृथ्वी पर चलते हुए भी उसके पैर बिल्कुल स्वच्छ हैं। वह इस बात का संकेत था कि कोई सांसारिक गंदगी उसे छू भी नहीं पाएगी। मार और उसकी सेना द्वारा व्यवधान डालने का प्रयास निष्फल हुआ। विपश्यना साधना की पुनः खोज करके सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने। मार की तीनों पुत्रियों द्वारा विपश्यना में परिपक्व भगवान सम्यक संबुद्ध को पथ भ्रष्ट करने का दुष्प्रयत्न भी निष्फल हुआ। म्यांमार के दो व्यापारी तपस और भल्लिक ने भगवान को चावल और मधु का मोदक अर्पित किया। यह विपश्यना के अन्वेषक सम्यक संबुद्ध का पहला भोजन था। एक नग्न सन्यासी संबुद्ध को देखकर प्रभावित तो हुआ, परंतु विश्वास नहीं कर पाया कि यह सचमुच सम्यक संबुद्ध है। इसी पत्र मृगदाह सारनाथ में भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दुख मुक्तिदायिनी विपश्चना की धर्म देशना दी। यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अपने पुत्र की खोज में आए हुए यश के पिता को भगवान ने विपश्यना की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध और विपश्यना के अभ्यास से अरहंत हुए भिक्षु यश को यश के माता पिता और उसकी पूर्व पत्नी ने भोजन दान दिया। भगवान ने प्रथम 60 अरहंत भिक्षुओं को मैत्रीपूर्वक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दुख विमोचने विपश्यना की धर्मचारिका करने का आदेश दिया। विपश्यना के आधार पर भयमुक्त भगवान बुद्ध ने एक कुटी में क्रुद्ध नाग को मैत्री दी। शील समाधि प्रज्ञा की विपश्यना विद्या सीखकर उरुवेल काश्यप और उसके 500 शिष्यों ने अपनी जटाएं काटी और भगवान के भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए। बहती हुई जटाओं को देखकर जटाधारी नदी काश्यप और गया काश्यप आश्चर्यचकित हुए। विपश्यना के तेज से प्रभावित जटाहीन काश्यप बंधुओं को भगवान के साथ देखकर राजगीर के लोग आश्चर्यचकित हुए। महाराज बिंबिसार ने सब 1004 भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित किया। तत्पश्चात भगवान के धर्मोपदेश सुनकर उसने राजोद्यान वेणुवन भगवान तथा भिक्षु संघ के विहार के लिए अर्पित कर दिया। विपश्यना में परिपक्व अरहंत अश्वजीत से सारिपुत्र ने भगवान के धर्म और वाद के बारे में पूछा। राजगीर की अग्रमहिषी रूप गर्विता खेमा रूप सौंदर्य की नश्वरता को समझ पाई और भगवान की अनमोल विद्या विपश्यना के अभ्यास में लग गई। भगवान कपिल वस्तु आकर भिक्षाटन करते हैं, तब पिता शुद्धोदन उन्हें रोकते हैं। यशोधरा अपने कक्ष में भगवान की चरण वंदना कर रही है। महाराज शुद्धोदन और सारिपुत्र देख रहे हैं। यशोधरा राहुल को उसके पिता भगवान बुद्ध के गुणों का परिचय कराती है। राहुल ने भगवान बुद्ध की छाया को सुखद बताया। भगवान ने सारिपुत्र को उसकी प्रवर्ज्या का निर्देश दिया। कपिल वस्तु के 6 राजकुमारों ने नम्रता दिखाते हुए उपाली नाई को पहले प्रवज्ञा देने का निवेदन किया ताकि वह संघ में उनका ज्येष्ठ रहे। अनाथ पिंडिक भगवान की धर्म देशना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भगवान के विहार के लिए जेतवन की सारी धरती पर सोना बिछाकर भूमि खरीदी। शाक्य और कोलीय नदी जल के लिए झगड़ पड़े, तब भगवान ने धर्मोपदेश देकर दोनों को शांत किया। तार्किक सच्चक भगवान से विवाद में पराभूत हुआ। पिंडोल भारद्वाज द्वारा चमत्कार दिखाने पर भगवान ने उसे फटकारा और चमत्कार दिखाने पर रोक लगाई। बोधि राजकुमार ने भगवान के स्वागत में गलीचा बिछाया, परंतु भगवान ने भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर उस पर चलने से मना कर दिया। भगवान ने मागंधीय ब्राह्मण की अति सुंदरी कन्या मागंधिया से विवाह का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। कौशाम्बी की पटरानी बनने पर बदले की भावना से प्रेरित मागंधिया ने भगवान को गालियों से अपमानित करवाया, परंतु विपश्चना के द्वारा समता के प्रवर्तक भगवान अविचलित रहे। चिंचा मांडविका ने भगवान को अपने अजन्मे बच्चे का पिता होने का झूठा आरोप लगाया। लोगों को विपश्यना के द्वारा समता सिखाने वाले भगवान स्वयं समता में स्थित रहे। भगवान के कुछ विरोधियों ने सुंदरी परिव्राजिका को मारकर उसकी लाश उठाए हुए भिक्षु संघ पर उसकी हत्या का झूठा आरोप लगाया। भगवान ने विपश्ची भिक्षु संघ को शांत रहने का उपदेश दिया। बलशाली आलवक द्वारा धमकाए जाने पर विपश्यना के प्रवर्तक भगवान ने दृढ़ और निडर रहकर उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। एक परिव्राजक गुरु शिष्य आपस में बुद्ध धर्म संघ की निंदा प्रशंसा कर रहे थे। विपश्यना में पके भिक्षु इस परिचर्चा में तटस्थ रहे। भगवान ने इसकी सराहना की। हत्यारा अंगुलीमार भगवान को मारने दौड़ा और उन्हें रुकने को कहा। विपश्यना विद्या के प्रसारक भगवान निडर रहे और कहा, मैं रुका ही हूं, तुम भी रुको। घी और कंकड़ भरी दो अंडियों को तुड़वाकर भगवान ने कर्म कांड को निष्फल बताया और कर्म तथा कर्मफल के नैसर्गिक नियमों को ठीक से समझाया। गंधार नरेश पुक्क साथी ने श्रमण वेश धारण कर गृह त्याग किया, तब बिलखते हुए प्रजा उसके पीछे चल पड़ी। उसने एक लकीर खींचकर राज आज्ञा द्वारा उन्हें रोका। अक्कोश भरद्वाज ने भगवान को गालियां दी, परंतु विपश्यना विद्या द्वारा समता में स्थित रहने की शिक्षा देने वाले भगवान ने स्वयं शांत रहकर उसकी गालियों की भेंट को अस्वीकार किया। रानी श्यामावती की दासी खुजुत्तरा भगवान से विपश्यना सीखकर बदल गई। अब वह ईमानदारी पूर्वक रानी के दिए पूरे पैसों का फूल लाने लगी। कसी भरद्वाज भगवान को ताना देते हुए कहता है कि जवान हो, मेरी तरह जोत बोकर खाओ। भगवान ने समझाया कि वे भी विपश्यना के आधार पर मन की खेती करते हैं। महिलाओं को विपश्यना का गहन अभ्यास कर सकने के लिए भिक्षु आनंद ने भगवान से भिक्षुणी संघ की स्थापना का अनुरोध किया। भगवान ने विपश्यना साधना करते हुए संघ की ओर इशारा करके महाप्रजापति गौतमी से कहा, यही मेरी सही वंदना कर रहे हैं। पटाचारा अपने सभी संबंधियों को खोकर पूरा होश खो बैठी थी। भगवान के संपर्क में आने पर होश जागा, तब अपने नग्न अवस्था पर सकुचाई, किसी ने उसे शॉल उड़ा दिया। तब से वह पटाचारा कहलाई और भिक्षुणी संघ से विपश्यना सीखकर अरहंत हो गए। किसा गौतमी भगवान से अपने मृत पुत्र को जिंदा करने की प्रार्थना करती है। भगवान ने उसे धर्म में दीक्षित किया। विपश्यना विद्या के अभ्यास द्वारा वह अरहंत हुई। भंगी सुनीत को भगवान ने आओ भिक्षु कहकर भिक्षु संघ में सम्मिलित किया। विपश्यना का अभ्यास करते हुए वह अरहंत हुआ। अनाथ बालक सोपाक को उसके निर्दयी चाचा ने शमशान में एक मुर्दे से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। भिक्षु संघ ने उसे बचाया। आगे जाकर वह विपश्यना विद्या द्वारा अरहंत हुआ। प्रकृति नामक अछूत कन्या से भिक्षु आनंद पानी मांगते हैं। नीची जाति की बताने पर कहते हैं, बहन मैंने पानी मांगा, तुम्हारी जात नहीं पूछी। प्रकृति ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे आनंद ने अस्वीकार किया और उसे भगवान के भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होकर विपश्यना से लाभान्वित होने का सुझाव दिया। शरद ऋतु में ठंडे और खुले वातावरण में सूखे पत्तों पर सोने के कारण भगवान से पूछा गया कि क्या वे सुख से सोए। विपश्यना के समता के प्रवर्तक भगवान ने कहा, मैं उनमें से हूँ जो सदा सुख के नींद सोते हैं। धर्म सेनापति सारिपुत्र पर किसी ने पीछे से घोर प्रहार किया, परंतु विपश्यना से उपलब्ध समता के कारण वे उस पर क्रोधित नहीं हुए। पात्र टूटने पर विपश्यना में परिपुष्ट सेनापति बंधुल की पत्नी मल्लिका को प्रमुख भिक्षु ने चिंतित न होने का उपदेश दिया। मल्लिका ने कहा, बंते, अभी अभी समाचार मिला कि राजा प्रसेनजीत ने मेरे पति और पुत्रों को षड्यंत्र करके मरवा दिया है। तिस पर भी मैं शांत हूँ, इस पात्र के टूटने की क्या चिंता करूँ। विपश्यना में परिपुष्ट हुआ अरहंत भिक्षु ब्रह्मदत्त कहता है, मैं क्रोध मुक्त हो चुका हूँ, अब गालियों से विचलित नहीं हो सकता। भिक्षुओं पर यह आरोप किया जाता है कि वे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करके माताओं को निपुति और पत्नियों को विधवा बना रहे हैं। विपश्य भिक्षु शांत रहे। ब्राह्मणों का नेता सोणदंड अन्य ब्राह्मणों को बताता है कि वह भगवान से अवश्य मिलने जाएगा। चित्र 78। वयोवृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मायु ने अपने शिष्य द्वारा भगवान के बारे में आंखों देखा हाल सुना और प्रभावित होकर स्वयं भगवान से मिलने पर विपश्यना विद्या की ओर उन्मुख हुआ। नल्लासुपारा का सन्यासी तारुचरिय भगवान से विपश्यना के सार का यह उपदेश सुनता है, देखने में प्रज्ञापूर्वक केवल देखना हो। महासार ब्राह्मण अत्यंत धनी था। जब चारों पुत्रों को सारा धन बांट दिया तब उन्होंने उसे दुत्कार दिया। भीख मांगते देख भगवान ने उसे ब्राह्मण सभा में सच कहने का उपदेश दिया। उनकी युक्ति से सबका मंगल हुआ। एक रोगी भिक्षु की सेवा करते हुए भगवान ने कहा, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। विपश्यना का यह व्यवहारिक धर्म है। सैय्य नामक एक निर्दोष मंत्री को राजा प्रसेनजीत ने कारावास में डाल दिया। तब उसने विपश्यना का अभ्यास किया और श्रोतापन्न हो गया। तिस पर राजा ने उसे मुक्त कर दिया। विपश्यना का अभ्यास करने वाली दासी पूर्णा ने ठंडे पानी में स्नान करते हुए ब्राह्मण से कहा, केवल स्नान से पाप धुलते तब तो सारे जलचर मुक्त हो जाते। विपश्यना के अभ्यास करके अरहंत हुई भिक्षुणी धम्मदिन्ना अपने पूर्व पति विशाख को विपश्यना द्वारा अरहंत अवस्था प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। विपश्यना का अभ्यास करने वाली विशाखा धनी कुल में ब्याही गई। श्वशुर मिगार बड़ा कंजूस था, युक्ति पूर्वक उसे समझाया कि पूर्व पुण्य का फल बासी भोजन के समान है। अब तो वह दान का नया पुण्य कर्म करता नहीं। भगवान की धर्म देशना से अनाथ पिंडक की पुत्र वधु सुजाता सुधरी। दुष्टमार सुंदर युवक के रूप में भिक्षुणी शिशुपचाला को काम भोग का प्रलोभन देता है, तब वह दृढ़तापूर्वक नकारती हुई कहती है, विपश्यना के अभ्यास से मेरी समस्त वासनाओं का निर्मूलन हो चुका है। सुना परंत महाराष्ट्र का व्यापारी पूर्ण श्रावस्ती में भगवान से विपश्यना सीख कर धर्म में पक गया। अपने प्रदेश के लोगों को धर्म सेवा हेतु भगवान से आज्ञा लेने गया। अपनी सहनशीलता तथा करुणा के कारण वह एक आदर्श धर्मदूत बना। अनाथ पिंडक चाहता था कि जेतवन में कोई मूर्ति स्थापित हो, जहाँ भगवान की अनुपस्थिति में लोग अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकें, परंतु भगवान ने इसे अस्वीकार करते हुए बोधि वृक्ष की स्थापना करवाई, ताकि केवल नमस्कार करने के बजाय उसके नीचे बैठकर लोग विपश्यना का अभ्यास करें। ब्राह्मण कूटदंत पशु बलि यज्ञ करने के लिए उद्यत था, परंतु भगवान ने उसे सही यज्ञ करने का मार्ग दिखाया। वह पशु बलि छोड़कर विपश्यना का सही यज्ञ करने लगा। अज्ञक भरद्वाज को विपश्यना के प्रवर्तक भगवान ने समझाया कि अच्छे या बुरे कर्म से ब्राह्मण या वृषल होता है, न कि जन्म से। सुंदरिक भारद्वाज ने भगवान को देखकर उनकी जाति पूछी। विपश्यना द्वारा जात पात के विरोधक और समता के संस्थापक भगवान ने कहा, जाति नहीं आचरण पूछो। विपश्यना करने वाले नकुल पिता के रोगी होने पर भगवान ने उससे पूछा, तुम्हारा शरीर रोगी है परंतु मन तो स्वस्थ है। उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मन बिल्कुल स्वस्थ है। विपश्यना में पकी हुई नकुल माता भी पति की सेवा में संलग्न और शांत रही। सारिपुत्र अपनी शतायु वयोवृद्धा माता को भगवान का विपश्यना धर्म सिखाते हैं। भगवान ने भिक्षुओं को समझाया कि फूलों से नहीं विपश्यना साधना करने से भगवान की सही पूजा होती है। भयंकर अकाल के समय घोड़े के व्यापारी द्वारा घोड़ों के लिए लाया गया हल्का अनाज भिक्षुओं को दान में दिया। इसे खाकर विपश्यना करते हुए भिक्षु संघ ने धैर्य और समता का परिचय दिया। किसी कारण भगवान कुछ समय के लिए बिल्कुल एकांत में चले गए। वहाँ जंगल में एक बूढ़ा हाथी उनकी सेवा करके धन्य हुआ। पिता बिंबिसार को अजात शत्रु ने जेल में डालकर असह्य प्रताड़ना दी, तिस पर भी विपश्यना में पके हुए सत्पुरुष बिंबिसार ने समता बनाए रखी। देवदत्त ने भगवान को मारने के लिए खूंखार नालागिरी हाथी को छुड़वाया, परंतु विपश्यना के प्रबल मैत्री बल के कारण हाथी ने भगवान के सामने घुटने टेक दिए। देवदत्त ने बुद्ध की हत्या के लिए हत्यारे नियुक्त करवाए, परंतु वे बुद्ध की हत्या न कर सके। देवदत्त स्वयं भी भगवान की हत्या करने में असफल हुआ। वैशाली में उन दिनों विपश्ची लिच्छवियों का गणराज्य था। भगवान ने गणराज्य की सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपदेश बताए। मगध सम्राट अजातशत्रु रात में भगवान से मिलने गया, परंतु वहाँ 1250 भिक्षुओं के होने पर भी वहाँ की अपूर्व नीरव शांति देखकर आतंकित और अचंभित हो उठा। विपश्यना करने वाली अम्बपाली गणिका ने भगवान को भोजन पर आमंत्रित किया। वैशाली के राजकुमार उससे यह आमंत्रण खरीदना चाहते थे, परंतु उसने इनकार कर दिया। महाराज प्रसेनजीत विपश्यना प्रवर्तक भगवान के धर्म समन्वित गुणों का बखान करते हुए उनके पैर चूमता है। शाक्यों के जात्याभिमान के कारण राजकुमार विदुधब्ब अपमानित हुआ। राजा बनने पर इस अपमान का बदला लेने के लिए वह आक्रमण करने चला, परंतु रास्ते में भगवान बुद्ध को बैठे देख लौट गया। महापरिनिर्वाण के कुछ क्षण पहले लोग पुष्पांजलि लेकर आए। भगवान ने समझाया कि विपश्यना साधना करने वाले ये भिक्षु ही उनकी सही वंदना कर रहे हैं। सुभद्र नामक परिव्राजक अंतिम क्षणों में दर्शन के लिए आया। उसमें भाव जागा कि इनसे कुछ सीखें। आनंद ने कहा, यह समय नहीं है। परंतु भगवान ने स्वयं बुलवाकर उसे विपश्यना धर्म समझाया। परिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु को लेकर विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण द्रोण ने बीच बिचाव करके उन्हें 8 भागों में बांटकर सभी राजाओं को संतुष्ट किया। जिस पात्र में शरीर धातु रखी थी उसे मांगकर श्रद्धापूर्वक उस पर स्तूप बनाने के लिए उसे वह स्वयं ले गया। भगवान के परिनिर्वाण के बाद भगवान की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए भिक्षु महाकाश्यप की अध्यक्षता में 500 अरहंतों की प्रथम संगीति हुई, जिसमें आनंद ने सुत्त और उपाली ने विनय को दोहराया। सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई तीसरी संगीति के समापन पर अध्यक्ष भिक्षु मुगली पुत्र तिस्स ने सोण और उत्तर नामक 2 अरहंत भिक्षुओं को बुद्धवाणी और विपश्यना विद्या का धर्म संदेश लेकर बर्मा भेजा। सम्राट अशोक ने भिक्षु मोग्गलीपुत्र तिस्से के निर्देशन में अपने पुत्र भिक्षु महेंद्र को भगवान की वाणी और विपश्यना विद्या का धर्म संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। राजा पियदस्सी तिस्से ने उसका स्वागत किया और वहाँ शुद्ध धर्म स्थापित हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्री भिक्षुणी संघमित्रा को बोधि वृक्ष की शाखा दी। उसे लेकर वह श्रीलंका गई और वहाँ उसने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। मध्य बर्मा के पगान नरेश अनवरत को अरहंत भिक्षु धर्मदर्शी ने विपश्यना का वास्तविक धर्म सिखाया, जिससे वहाँ का दूषित धर्म समाप्त किया गया। विपश्यना धर्म से प्रभावित सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमा पर शिलापट्ट पर विपश्यना पूरित धर्म का अभिलेख लिखवाया और पड़ोसियों से कहा कि अब वह युद्ध द्वारा कोई राज्य नहीं जीतेगा, बल्कि विपश्यना से प्राप्त हुए धर्म भरे प्यार से ही जीतेगा। श्रीलंका के राजा वट्टगामिनी के संरक्षण में और भदंत महारक्षित की अध्यक्षता में चौथी संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें विपश्यना पूर्ण बुद्धवाणी को ताड़पत्रों पर लिखकर सुरक्षित रखा गया। सन 1871 में म्यामा नरेश मिंडोमिन के संरक्षण में पांचवी संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारा त्रिपिटक संगमरमर की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण हुआ। छठी संगीति यांगों म्यांमा में प्रधानमंत्री उनू की सरकार के संरक्षण में 1954 से 1956 तक विशाल कबाय हॉल में 2 वर्षों में संपन्न हुई। भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं।